राधिका, वीडियो कॉल एक्सेप्ट कीजिए। माधव ने बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट की, पर राधिका ने बिना एक पल लगाए निर्मोही बनकर उसका दिल तोड़ दिया। नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं होगी। शादी से पहले आपका मुझे देखना मना है, तो कल तक इंतजार कीजिए, उसके बाद जितना चाहे देख लीजिएगा। मुझे आपको थोड़े देखना है, बस अपनी हथेली पर सजी मेहंदी दिखा दीजिएगा। उसमें मौजूद अपना नाम देखकर मैं अपने दिल को समझा लूंगा कि ये सब कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है, और राधिका अपनी किस्मत की रेखाओं में मेरा नाम लिए अब मेरी बनने को तैयार है। प्यार के मीठे मीठे एहसासों से भरे कोमल शब्द सुनकर राधिका मौन रह गई, गालों की रंगत कुछ निखरी और अनायास ही नजर अपनी हथेली कर चली गई। मेरी किस्मत में आपका नाम लिख गया है, कल देख लीजिएगा आप, आपके प्यार का रंग कितना गहरा चढ़ा है मेरी हथेली पर। अभी नहीं दिखा सकती, कल तक दिल बेकल रहेगा, माधव ने बेचैनी भरे स्वर में गुजारिश की। राधिका ने पल भर सोचा, फिर उसे वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज दी, जिसे माधव ने तुरंत ही एक्सेप्ट किया और नजरें सीधे स्क्रीन पर दिखती राधिका के मेहंदी रची बांह और हथेली पर गई। अब ढूंढकर बताइए इसमें अपना नाम, राधिका की आवाज माधव के कानों से टकराई। उसने भी मुस्कुराकर राधिका के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अभी ढूंढते हैं, फोन को जरा पास तो लेकर जाइए। इसके बाद काफी देर तक माधव उधर से राधिका को इंस्ट्रक्शन देता रहा, कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी इधर तो कभी उधर। सारे वक्त वो गित सी नजरें फोन की स्क्रीन पर टिकाए राधिका की मेहंदी में पूरी शिद्दत से अपने नाम को ढूंढता रहा। उस बारीक मेहंदी में सामने से नाम ढूंढना मुश्किल था, और यहाँ तो मामला फोन पर निपटाया जा रहा था। माधव को खासी मशक्कत करनी पड़ी, राधिका भी कुछ चिढ़ सी गई, पर वो कहते हैं ना, शिद्दत से कोशिश करो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। रास्ते कितने ही मुश्किल हों, मंजिल मिल ही जाती है। बस ऐसा ही कुछ माधव के साथ हुआ। जितनी शिद्दत से वो राधिका की हथेली पर अपना नाम ढूंढ रहा था, मुश्किल के बाद ही सही, पर जैसे ही उसे उसकी मेहंदी में छुपा अपना नाम नजर आया, माधव की आंखें चमक उठी और लबों पर सुकून मुस्कान बनकर बिखर गईं। अगली ही राधिका को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चौंकते हुए स्क्रीन को अपनी ओर घुमाया। उसी वक्त माधव स्क्रीन को चूमने के बाद पीछे हटा। असल में राधिका की हथेली पर सजे अपने नाम को अपने लबों से चूमने की ख्वाहिश उसने ऐसे ही पूरी की थी। राधिका और माधव की निगाहें पल भर को टकराईं। अगले ही पल राधिका ने हड़बड़ाते हुए फोन काट दिया और फोन के दूसरी तरफ मौजूद माधव ठहाका लगाकर हंस पड़ा। कल शादी थी उनकी, 15 दिन तो जैसे पलक झपकते ही बीत गए थे। जैसा कि तय था, शादी सादगी से हो रही थी। राधिका की मौसी के अलावा किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया था। हालांकि आशुतोष जी जानते थे कि अर्पिता की शादी में जब सब आएंगे और राधिका को सुहागन के रूप में देखेंगे तो सवाल उठेंगे और शायद नाराज भी हों कि छुपकर चुपचाप शादी करवा दी। पर अभी वो भी नहीं चाहते थे कि किसी भी गलत इंसान की परछाई भी इस रिश्ते पर पड़े या राधिका के अतीत का जिक्र हो, उसके जख्मों को कुरेदा जाए। बस परिवार वालों की मौजूदगी में ही शादी होनी थी। सगाई और शादी के बीच का ये वक्त बेहद खूबसूरत यादों को खुद में समेटे उनके रिश्ते को एक नया आयाम दे चुका था। बातें तो सुबह शाम होती थीं और बातों में मोहब्बत की मिठास खुली होती थी, हल्की छेड़छाड़ थी होती। माधव कोशिश कर रहा था राधिका को इस रिश्ते और अपने साथ सहज करने की, और कामयाब भी हो रहा था। राधिका उससे खुलकर बात तो करती थी, पर अनुपमा जी के बताए सारे नियम कानून भी मानती थी। शायद वो इस बार कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए शादी से पहले उनका मिलना बंद था। लगन चढ़ने के बाद से उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। वीडियो कॉल पर बात भी बंद थी कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को देखना शुभ नहीं। उसके हर एक्शन में माधव के लिए उसका प्यार छलकता था। ये रिश्ता उसके लिए कितना अहम है इसका एहसास करवाता था, और साथ ही उसके मन की गहराइयों में बसे डर से भी रूबरू करवाता था। अभी राधिका सदमे की स्थिति में ही खड़ी ही थी कि उसका फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर माधव का नाम देखते ही राधिका का चेहरा नाराजगी से भर गया। फोन उठाते ही वो उस पर बरस पड़ी। क्यों करते हैं आप ऐसा? आंटी ने कहा है ना कि शादी से पहले दुल्हन दूल्हे का एक दूसरे को देखना शुभ नहीं, पर आप सुनते ही नहीं। देख लीजिए, अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। नाराज राधिका ने उसे डांट भी दिया और धमका भी दिया। माधव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, उसके शांत होने का इंतजार करता रहा। राधिका चुप हुई तो उसने गंभीरता से सवाल किया, राधिका इतना क्यों डरती है? कुछ गलत नहीं होगा, और मैंने जानबूझकर थोड़े ना आपका चेहरा देखा था। वो तो आप एकदम से सामने आ गई थी, पर मैं ठीक से आपका चेहरा देख पाता उससे पहले ही आपने फोन काट दिया था। बेवजह ही आप इतनी परेशान हो रही हैं। चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बस चंद घंटों की बात है। अपने डर पर काबू रखिए और विश्वास रखिए मुझ पर, इस बार कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं आपके साथ। उसके शब्दों पर विश्वास करने को जी चाह रहा था राधिका का, पर मन में एक डर अब भी मौजूद था। उसने बेमन से हुंकार भर दी, राधिका आप तो अभी से ही मुझसे पत्नियों जैसे लड़ने लगी हैं। माधव के शब्द कानों से टकराए तो राधिका को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और उसने अपना चेहरा यूं झुकाया जैसे माधव उसके सामने ही खड़ा हो। सॉरी, वो मैं डर गई थी, परेशान थी तो आप पर गुस्सा हो गई। माधव ने अब अफसोस से अपना सर हिलाया और बेहद प्यार से बोला, इट्स ओके राधिका, माफी मांगने की जरूरत नहीं थी आपको, हक है आपका मुझ पर, अगर प्यार कर सकती हैं तो आपके गुस्से और नाराजगी पर भी मेरा भी हक हुआ। चलिए ये सब बातें छोड़िए और ये बताइए कि सच में शेविंग कर लूं? शिखा सुबह से पीछे पड़ी है, कहती है अपनी शादी में बाबाजी बनकर जाऊंगा तो पंडित की जगह मुझे बिठाकर किसी और से ही आपके फेरे पड़वा देगी, और अन्वय भी कह रहा था कि शादी से पहले शेविंग कर लूं, अच्छा लुक आएगा, वो तो वैक्सिंग के लिए भी कह रहा था, मुझे तो ये सब पसंद नहीं और ना ही इसकी जरूरत महसूस होती थी, पर सुमन करवाने पर जोर देती थी, अगर आप कहेंगी तो करवा लूंगा। माधव ने तो आम से अंदाज में ये बात कही थी, पर सुमन का जिक्र सुनते ही राधिका का मन अजीब सा हो गया। सुमन से जलन नहीं होती थी, बस बीते दिनों में कई बार ऐसे ही जाने अनजाने माधव ने उसका जिक्र किया था, जो राधिका को एहसास दिला देता था कि सुमन से जुड़े रिश्ते में उसने कितना कुछ सहा था और उसके दिल में एक टीस सी उठती थी। इस बार भी राधिका के चेहरे पर अजीब सा दर्द और उदासी छा गई। नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है और मैं आपको वैसे ही अपनाना चाहती हूँ, आपको बदलने की नीयत से मैं आपकी जिंदगी में कदम नहीं रख रही। राधिका का जवाब सुनकर माधव बहुत कुछ समझ गया था, पल भर को वो कुछ कह ना सका, फिर सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोला, वैसे मैं सोच रहा था शेव कर लूं, फोटोज अच्छी आएंगी, कल दुल्हन के रूप में आप खूबसूरत लगेंगी ही, अब खूबसूरत दुल्हन के साथ एक दाढ़ी वाला आदमी जंचेगा नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो आपको ठीक लगे, मुझे तो आप ऐसे भी अच्छे लगते हैं। चलिए तो यही बता दीजिए कि पहले ज्यादा अच्छा लगता था या अभी? माधव ने दिमाग लगाया था, पहले क्लीन शेव रहा करता था और अब दाढ़ी उगा ली थी, राधिका जवाब देती तो उसे अपने पहले सवाल का जवाब भी मिल जाता, पर राधिका के जवाब ने उसकी उलझन को बढ़ा दिया। मैंने आपका चेहरा देखकर पसंद नहीं किया था आपको, आपका नेचर पसंद आया था मुझे और वो अब भी वैसा ही है। राधिका का जवाब सुनकर माधव फ्रस्ट्रेट हो गया, राधिका एक जवाब दे दीजिए ना, शेव करूं या रहने दूं, आपको कैसे लड़के पसंद हैं यही बता दीजिए।
मेरी लड़कों की दाढ़ी मूछों को लेकर ऐसी कोई खास चॉइस या प्रेफरेंस नहीं है, किसी और पर तो मैंने गौर भी नहीं किया, पर आपके बारे में इतना बता सकती हूँ कि बिना दाढ़ी मूछ के आप बहुत स्वीट और क्यूट बॉय लगते थे, पर अब आपका शरीर भी बन गया है तो दाढ़ी मूछ में हैंडसम और चार्मिंग लगते हैं। इस वक्त आपकी पर्सनालिटी पर ये दाढ़ी मूछ सूट करती है, शायद क्लीन शेव में इतने अच्छे ना लगे। फाइनली राधिका ने माधव को उसके सवाल का जवाब दे दिया था और माधव समझ गया था कि उसे क्या करना है। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाने के कुछ बोल माधव के कानों से टकराए, मुझे साजन के घर जाना है, शायद कहीं ये गाना बज रहा था और साथ ही कुछ आवाज़ें भी गूंज रही थीं जो अब और ज़्यादा तेज़ हो गई थीं। राधिका, ये इतनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? माधव को बात करने में परेशानी हुई तो उसने पूछ ही लिया। सवाल सुनकर राधिका के लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। मेरी बहनें अंदर डांस कर रही हैं, कह रही थीं आपको सादगी से शादी करनी है तो कीजिए, हम तो अपने सारे शौक पूरे करेंगे और खूब मस्ती करेंगे, उन्हीं ने शाम से हल्ला मचाया हुआ है, अभी थक कर बैठी थीं, अब फिर से शुरू हो गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी दीदी की शादी में एंजॉय करने का पूरा हक है उन्हें, आप भी जाइए अपनी बहनों के साथ वक्त बिताइए, इन लम्हों को खुलकर एंजॉय कीजिए। माधव ने बाय कहा और फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया, लब मुस्कुराए, उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया और ख़ुद को निहारने लगा। गौर किया तो सच में अब शरीर पहले से ज़्यादा सख्त हो गया था। अपनी दाढ़ी को अपनी उंगलियों से सहलाया, बढ़ तो गई थी दाढ़ी, बनाए हुए भी तो टाइम हो गया था। कुछ सोचकर एक बार फिर उसके लब मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ राधिका अपनी हथेली पर रची मेहंदी को निहारते हुए खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी। कभी जिसे अपने दिल में बसाया था, आज पूरे हक से उसके नाम को अपनी हथेली पर सजाया था, ये एहसास बेहद खास था उसके लिए। अपनी मेहंदी में माधव का नाम देखते हुए राधिका की आंखों के आगे कुछ देर पहले का दृश्य उभर आया और उसने शर्माकर अपनी हथेलियों में अपना चेहरा इस प्रकार छुपाया जैसे सामने खड़ा माधव उसे ही निहार रहा हो। टू बी कंटिन्यूड।